नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप दिवाली में स्थानीय उत्पादों की खरीद करने की अपील की। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल में शामिल। और विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की कल जांच होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड को लेकर चिंता प्रकट की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कानूनन किसी को भी डिजिटली अरेस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं।
तमाम जांच एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर नागरिक की जागरूकता।
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान एक पीड़ित और एक जालसाज के बीच हुई बातचीत को भी सुनाया। बातचीत में जालसाज अपने को पुलिस, सीबीआई अथवा नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बता रहा था। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जालसाज पीड़ित से व्यक्तिगत सूचनाएं लेकर भय का माहौल पैदा कर देते हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हो। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के लिए 3 उपायों की चर्चा की। ये उपाय हैं, रुको, सोचो और करो।
मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूँ। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल फ्रॉड की स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को शांत रहने और अपनी व्यक्तिगत सूचना किसी से भी साझा न करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे मामलों में सलाह के लिए साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल करने और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर मामले की जानकारी देने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जागरूकता का प्रसार भी करना चाहिए। इसके लिए #safedigitalindia का उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की सामूहिक चेतना का अंग बन गया है।
कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज 85 देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है। ये 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मेड इन इंडिया है।
मन की बात में प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया के बारे में भी बात की। उन्होंने संतोष जाहिर किया कि भारत के लोग फिटनेस के बारे में ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से नवाचार और आत्मनिर्भर भारत संबंधी उदाहरण सोशल मीडिया पर साझा करने की भी अपील की। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में खरीदारी करते समय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती इस महीने की 31 तारीख को है और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती 15 नवंबर को मनाई जाएगी।
इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी, लेकिन दोनों का विजन एक था, देश की एकता। सरकार ने महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने, लोह पुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 के साथ साझा करें और धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को #बिरसा मुंडा150 के साथ दुनिया के सामने लाए।
श्री मोदी ने इस वर्ष 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर सरदार पटेल की जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके कारण रन फॉर यूनिटी 29 अक्टूबर को ही आयोजित होगी। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए भाजपा प्रदेश मुख्यालय समेत विभिन्न जिलों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री सह पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पार्टी के अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर मुद्दे को उठाकर लोगों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि मन की बात में आत्मनिर्भर भारत, फिट इंडिया अभियान और लोकल फॉर वोकल जैसे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को देश की प्रगति से सीधे तौर पर जोड़ दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब और उनके पुत्र उसामा शहाब ने आज राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने इन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इससे पहले तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में इन दोनों के पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि हीना शहाब राजद नेतृत्व से नाराज चल रही थीं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडेय ने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी। उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर 50 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवम्बर को होगा। मतों की गिनती 23 नवम्बर को की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कला, संस्कृति और युवा विभाग विरासत युक्त विकसित बिहार बनाने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में स्पष्ट नीति के साथ कार्य कर रहा है। श्री सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में तय मानदंडों के आधार पर कलाकारों को मानदेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सोनपुर मेले में 12 दिनों के लिए विभाग के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मानदेय के साथ आमंत्रित कलाकारों की सूची तैयार की जा रही है।
मैं नेता प्रतिपक्ष को पहले भी हमने सलाह दिया कि ईमानदारी से जिम्मेवारी निभाएं। दूसरे के लिखे हुए पोस्ट पढ़ने से वो हल्के हो रहे हैं। उनको पता होनी चाहिए कि स्पष्ट नीति सफल नीति है। कला संस्कृति विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि 75% बिहार के कलाकार होंगे और जो राशि हम देते हैं उसमें 60% कलाकारों को मिलता है उचित सम्मान और उचित मानदेय भी देते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो स्क्रिप्ट भाड़े पर रखे लोगों से लिखवाते हैं उससे आपका ज्ञानवर्धन नहीं, आपकी छवि धूमिल होती है। पूरी जानकारी लेकर के देना चाहिए।
चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न भागों में अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। मुंगेर में सबसे अधिक 84 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इधर राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत में थोड़ा सुधार होने की सूचना है। उनके पुत्र अंशुमन ने बताया कि उनका इलाज नई दिल्ली स्थित एम्स के ICU में चल रहा है। अंशुमन ने बताया कि एम्स के डॉक्टरों की टीम लोक गायिका के इलाज में तत्परता से जुटी हुई है। उन्होंने सभी प्रशंसकों से शारदा सिन्हा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध किया है।
शारदा जी इस वक्त आईसीयू में हैं और अपनी स्थिति से लड़ रही हैं। वो कॉन्शियस हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई है और वंदना जो उनकी डॉक्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है। आज डॉक्टर राजा प्रमाणिक से स्पष्ट बातचीत हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल से थोड़ा सुधार दिख रहा है और ये सुधार अच्छे के लिए है। हालांकि स्थिति पर अभी पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है। आज शारदा जी से मेरी जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने मुझे ऐसे हाथ से इशारा करके कहा कि मैं पहले से बेटर हूँ।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लगातार दूसरे दिन पटना में छठ घाटों का निरीक्षण किया। श्री कुमार ने सड़क मार्ग से जेपी गंगा पथ होते हुए दीघा के पाटीपुल घाट, एलसीटी घाट, पहलवान घाट, कृष्णा घाट समेत विभिन्न घाटों पर किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छठ व्रती सुगमता पूर्वक गंगा नदी के घाटों पर आ जा सकें, इसके लिए रास्तों को शीघ्र ही दुरुस्त कराया जाए। साथ ही घाटों पर व्रतियों के लिए अन्य सुविधाएं और सुरक्षा उपायों को भी समय से पूर्व ठीक कर लिया जाए। बिहार और कर्नाटक के बीच पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे दिन का खेल आज नहीं हो सका। मैदान गीला होने और रोशनी कम होने के कारण खेल में बाधा आई है। रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और सांसद दिनेश चंद्र यादव को शामिल कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये नियुक्तियां की हैं। खगड़िया जिले में ई रिक्शा चालकों से रंगदारी वसूलने के आरोप में रहीमपुर के शिक्षक अशोक कुमार और एकनिया दियारा के शिक्षक पुरुषोत्तम कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जमुई के खैरा में राज्यस्तरीय अंडर 14 बालक ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 30 जिलों के 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इधर बेगूसराय में खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आज 5 दिवसीय राज्य स्तरीय बालिका ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। शेखपुरा जिले में पैक्स चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने 34 पैक्सों में दो चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 12 कोषांग का गठन किया है। जिले में पहले चरण का पैक्स चुनाव 26 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 29 नवंबर को होगा। वैशाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 995 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत लल्लू पोखर तिनबटिया के पास पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने लोगों को भयभीत न होने और डिजिटल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप दिवाली में स्थानीय उत्पादों की खरीद करने की अपील की है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल में शामिल। और विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की कल जाँच होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।